भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बल धामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। भगवान शंकर ने जगत जननी पार्वती जी को जिस राम कथा का गान किया था उसमें काग भुसुंड जी और गरुड़ जी के संवाद को मुख्य रख करके किया था। तो गरुड़ जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने से काग भुसुंड जी के पास जाकर राम कथा सुनी और साथ साथ गरुड़ जी ने काग भुसुंड जी का चरित्र सुना और सुन रहे हैं। देखो भगवान का चरित्र सुनने के बाद संत चरित्र समझ में आता है। सत्संग पहले मिलता है, संत का संग पहले मिलता है और फिर कथा मिलती है, भगवान का चरित्र मिलता है और फिर उसके बाद संत चरित्र समझ में आता है। संतों का चरित्र समझ में नहीं आता। काग भुसुंड जी के विषय में जब वो पूछ रहे हैं तो गरुड़ जी महाराज को आश्चर्य, काग भुसुंड जी कैसे भगवान के भक्त निकले और पूर्व जन्म में कितने घटिया दर्जे के थे, कैसे कैसे इनको शाप मिले और काग भुसुंड के शरीर में भी आए तो कोई योनि काटते हुए नहीं आए। ऋषि ने शाप दे दिया, तुम कौवा हो जाओ तो कौवा हो गए। तो इनका कौवा होना भी एक ऋषि का शाप ही है, इनको ज्ञान मिला वो ऋषि का वरदान है, संत का वरदान है। पूरी कथा सुनाई उन्होंने कि भाई इस प्रकार से 27 कल्पों से मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूं सुमेरु पर्वत में और मेरे यहां हरदम कथा चलती रहती है। और देखो गरुड़ जी महाराज, मैंने काग देह किस प्रकार से प्राप्त की ये हमने आपको सुना दिया है। मेरे जीवन का यदि आप सार समझना चाहते हो तो हे उर्गारे, आपको भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस संसार सागर से कोई पार होना चाहे तो भगवान की भक्ति नौका है और कोई आधार नहीं है। काग भुसुंड जी के ये वचन सुनकर के हे पार्वती, गरुड़ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, मुस्कुराते हुए बड़ी नम्रता से कहने लगे, हे काग भुसुंड जी, आपकी कृपा से मेरे मन में अब पहले जैसा संशय शोक भ्रम कुछ नहीं रहा। क्या विलक्षण आपने मुझे भगवान का चरित्र सुनाया। भगवान का चरित्र सुनते सुनते हमने तो ये देखा कि भगवान का चरित्र तो हमारे हृदय में हो ही रहा है, क्योंकि ऐसे भगवान में मन लगाते हैं तो लगता नहीं है और भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मन स्वयं ही भगवान हो गया, भगवान की लीला हो गया। कितना आराम से मन भगवान में लगता है। एक बात आपसे मैं पूछता हूं, हे कृपा निधान, अच्छे अच्छे संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने वेद और पुराणों में यही बात बताया बताई गई है कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ नहीं है। देखो आज का जो प्रसंग है ना, ये बहुत गहराई से सुनने का है। तो गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि सब जगह जाओ, सब यही कहते हैं कि ज्ञान के समान कोई दुर्लभ नहीं है, ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है। और आपने भी बताया कि इस काकभुसुंड शरीर से पहले मैं ब्राह्मण शरीर में था, लोमस ऋषि के पास गया था, उन्होंने भी मुझे ज्ञान की बातें ज्यादा बताई। लेकिन आपके अभी के विवेचन में ऐसा लगता है कि आप जितना भक्ति का आदर करते हैं उतना ज्ञान का नहीं करते हैं। अभी अभी आपने कहा कि भगवान की भक्ति है संसार सागर से पार होने के लिए नौका है। तो महाराज जी क्या बात है, आप भक्ति का इतना आदर करते हैं, ज्ञान का आदर नहीं करते हैं। आपकी दृष्टि में ज्ञान में और भक्ति में कुछ अंतर है क्या महाराज, यह तो कुछ बताओ। आप कृपा निदान हो, यदि हमारे बोलने में हमारे प्रश्न करने में कोई गलती हो गई तो आप क्षमा करना, हम रहस्य पूछना चाहते हैं। काकभुसुंड जी महाराज कहने लगे, एक गरुड़ जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, ज्ञान में और भक्ति में फल में कोई भेद नहीं है, जो कल्याण ज्ञान से होता है वही कल्याण भक्ति से होता है, जो कल्याण भक्ति से होता है वही कल्याण ज्ञान से होता है। ज्ञान में और भक्ति में जो मैंने कुछ भेद किया है वो किसी और कारण से बताया है, फल में भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको ज्ञान हो जाएगा वो संसार में दोबारा भटकेगा, जन्मेगा मरेगा, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अंतर है तो वो साधना में अंतर है। कि महाराज वो अंतर क्या है कि देखो, ज्ञान वैराग्य विज्ञान योग ये शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द है, ये पुरुषवाचक शब्द है। तुमको ज्ञान हो गया, तुमको वैराग्य हो गया, तुमको विज्ञान हो गया, तुम्हारा योग पूरा हो गया, ये क्या है, पुरुषवाचक शब्द है। और भक्ति है ये स्त्रीवाचक शब्द है, तुम्हें भक्ति पसंद है कि नहीं, भक्ति तुम्हारी होती है कि नहीं, भक्ति तुम्हारी कैसी बढ़ रही है, ये सब स्त्रीवाचक शब्द है। भक्ति तो स्त्रीवाचक, ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ये सब पुरुषवाचक है। अब देखो, पुरुष होता है वो तो बड़ा समर्थ होता है, स्त्री होती है वो बिचारी अबला होती है। ऐसे ये माया है, ये माया क्या है, ये स्त्री है माया। जिस माया के प्रपंच में हम लोग फंस जाते हैं, इस माया के प्रपंच से छूटने के लिए हम ज्ञान का आश्रय लेते हैं, वैराग्य का आश्रय लेते हैं। तो हम ये भूल कर लेते हैं कि माया स्त्री है और ये ज्ञान है ये पुरुष है। स्त्री और पुरुष का तो वास्तव में आकर्षण होता है। माया का त्याग करना हो तो वहां भक्ति को लाओ, स्त्री का त्याग करना स्त्री को लाओ। जैसे कहीं स्त्रियां प्रदर्शन करती हो, कोई नाराबाजी करती हो, हड़ताल करती हो, तो वहां पर पुरुष सिपाही नहीं जाते, वहां स्त्रियां ही जाती है, सिपाही बनी हुई स्त्रियां जाती है और उनको धक्का मारती है, उनको जो भी कुछ दंड देना है वो देती है, पुरुष नहीं जाते वहां, कायदा नहीं है। और वो जो होती है सिपाही बनी हुई स्त्रियां, वो चोटी भी पकड़ेंगी, धक्का भी मारेंगी, सब करेंगी, लेकिन पुरुष ऐसे छू सकता है क्या, किसी माई बाई की चोटी पकड़ सकता है, अपराध हो जाएगा। क्योंकि स्त्री होती है वो स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती, और पुरुष और स्त्री का आपस में आकर्षण होता है। जो बड़े बड़े विरक्त हैं, धैर्यवान पुरुष है, जिनको बहुत प्रबलतम वैराग्य हुआ है, वे लोग तो नारी का त्याग कर सकते हैं, परंतु जिनकी विषयाशक्ति भी है और भगवान में कोई प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति स्त्री का त्याग करे तो बड़ी कठिन बात हो जाती है। इसलिए मैं बिना किसी पक्षपात के कहता हूं कि माया का निराकरण करने के लिए ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी भक्ति की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि भगवान को भी भक्ति बहुत प्यारी लगती है और माया है ये भगवान के सामने दासी बनी हुई है। अब भक्ति है वो तो भगवान के यहाँ रानी बनी हुई, माया है ये दासी बनी हुई। तो जहां भक्ति रहेगी वो माया को आदेश देगी, अरे तुमको ये काम करना है, तो माया तो नौकरानी रहती है। अब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उसके हृदय में भक्ति के पति भगवान पास में रहेंगे ही। तो भक्ति और भगवान जब दोनों उसके पास में है तो ताते ते ही डर पति अति माया, माया उसे डरती रहेगी, अरे मेरे मालिक मेरे मालकिनी दोनों बैठे हुए, हम ऐसा कैसे करें। ऐसे वो माया डरती रहती है। यदि माया से आपको डर नहीं है, माया को जीत लिया है, तो ज्ञान वैराग्य खूब आराम से करो ना। लेकिन करें क्या भाई, अच्छे अच्छे ज्ञान निधान ऋषि मुनियों को भी देखा है कि वो मृग नयनी के मुख को देख करके उसमें फंस जाते हैं। ये भगवान विष्णु ही नारी के रूप में अपना माया कौशल प्रकट किया है, इसलिए लोगों को सावधान करने के लिए कि इस माया में मत फंसना, उन्होंने भक्ति को भेजा है और जाओ तुम इस माया से लोगों को छुड़ाते रहो। इसलिए महापुरुषों ने विचार किया कि जीवन तो बहुत छोटा है, क्या पता कब संसार से चले जाए, और मरते मरते भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर माया से यदि पिंड नहीं छुड़ाया तो फिर हमारा जन्म ही व्यर्थ हो गया। इसलिए यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने उ मोहन होई। एक तो ये भेद है, माया के जीतने के लिए भक्ति आवश्यक है, इतनी ज्ञान आवश्यक नहीं, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि देखो काक भुसुंड जी महाराज बोलते हैं, देखो गरुड़ जी, दूसरा हेतु एक बहुत गहरा हेतु है, उसको समझने समझाने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। समुझत बनाई नहीं जाई बखान, अकथ कहानी। ये एक ऐसी कहानी है कि जो कही भी नहीं जा सकती है और कहनी भी चाहिए, कहने में आती नहीं और समझने में आती है लेकिन कहने में नहीं आती। कह नहीं सकते, कैसे कहे कि महाराज वो क्या रहस्य है। कहने के सुनो, देखो ये जीव है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश का अर्थ मेरी दृष्टि में स्वरूप है गरुड़ जी महाराज, जैसा ईश्वर है वैसा ही ये जीव है, दोनों एक है एक। बद्रीनारायण से कोई आदमी गंगा जल लेकर आएगा, साहब ये बद्रीनारायण से लाए, लाओ गंगा जल लाओ, तो अपने सिंथल में गंगा जल आ जाए, तो वो गंगा जल साहब ये बद्रीनारायण का गंगा जल है, ये ऋषिकेश का गंगा जल है, तो ऋषिकेश का गंगा जल और यहाँ आए हुए शिशि का गंगा जल, जल तत्व तो एक है ना। ऐसे ही व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन सृष्टि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक संचालक संहारक भगवान और उनका अंश ये जीवात्मा, तो दोनों में सच्चिदानंदत्व तो वो का वही है, बाकी ईश्वर की महिमा तो अलग है ही, पर दोनों में एकता में बताते हुए बोलता हूं गरुड़ जी महाराज। चेतन अमल और सहज सुख राशि, चेतन माने चित्त और सहज सुख राशि माने आनंद और अविनाशी माने सत। सत चित और आनंद तो ज्यों का त्यों ही है। वो जीव एकदम ईश्वर का ही रूप था, ईश्वरी था, परंतु माया के साथ चिपक जाने से माया का धर्म इसमें आ गया। देखो ये पंखे में ताड़ी, अपने को लगती है ताड़ी घूमती है, ताड़ी नहीं घूमती है, ताड़ी तो अपनी जगह ही है, घूमते क्या है इसके अंदर की मशीन घूमती है, वही ताड़ी तो अपनी जगह ही है। अच्छा इस ताड़ी में यदि कोई लाल धब्बा कर दे तो लाल का एक गोड़ा कर देंगे लाल, अरे वो लाल उसी के चिपका हुआ है, वो थोड़ी हिलता है, पंखे थोड़ी हिल रहे, ताड़ी थोड़ी चलती है, ताड़ी तो अपनी जगह ही घूम रही है, तो संसारण तो यहां से हो रहा है। ऐसे ही जीव है, ये न जन्मता है न मरता है न आता है न जाता है, वो माया के वशीभूत हो गया, सब काम तो माया में होता है, जीव अपने मान लेता है। बंदियों की मरकट की नाई, ये जीव तोते और बंदर की तरह फंस गया। दो उदाहरण दिए, तोता और बंदर। तोता फंसता है पीने के चक्कर में और बंदर फंसता है खाने के चक्कर में। संसार में हम लोग सबसे पहले फंसे तो कहां से चालू हुआ, खाने पीने से चालू हुआ है संसार। इसलिए संतों ने भगवान से कहा, महाराज जी भूख नहीं देते तो हम संसार में आते ही नहीं, ये भूख लगती है ना। रही मन कहते सो पेट को क्यों न भई तू पीठ, ए पेट तू पीठ क्यों नहीं हो गया रे, क्यों कि तू रीता रहता है, खाली रहता है तो तकलीफ देता है और खूब सारा ठूस लेता है, खूब सारा लड्डू खाली हो जाए वो पेट हो जाए तो तकलीफ देता है, बेचारी पीठ कभी तकलीफ नहीं देती। तो ये खाने पीने के चक्कर में भगवान से कहा, ये यहां से ये संसार में उतरने की पेड़ियां हैं, जैसे कोई तालाब में जाए पेड़ी से जाएगा, तो यहाँ पेड़ी क्या है, खाना और पीना, यहां से चालू हो गया काम। तो तोता है वो कैसे है कि खूब उड़ता है, तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बहुत गोल चिकनी लकड़ी लेकर के और परात वगैरह रख करके उसके ऊपर लकड़ी रख दी, चिकनी गोल तेल वेल लगाई हुई एकदम चिकनी, तोता आता है प्यासा वो आकर के यूं पकड़ता है लकड़ी को, लकड़ी को पकड़ करके उस पर बैठ करके चोंच पानी में यूं लगाता है, लकड़ी गुड़कती है, गुड़कते ही वो उसको छोड़ा नहीं, उल्टा हो जाता है। अब वो उल्टा हुआ देखता है कि ओहो मेरे पर आसमान आ गया, अब कैसे हूं, अब उसको ये पता नहीं थोड़ा जोर और लगाऊं तो मैं ऊपर हो सकता हूं और उड़ सकता हूं। वो देखता है भाई अब मेरे पर आसमान आ गया, मैं तो आसमान के नीचे दब गया। अब वो तोता जो है बेचारा इतनी देर में आके लोग पकड़ लेते हैं उसको। ऐसे ही बंदर है, छोटे मुंह का घड़ा होता है, उसके चारों तरफ थोड़ा चना बिखेर दिया, बंदर बाहर के चने खा गया। चना एक ऐसा है इसको थोड़ा सा खाना चालू कर देना फिर खाते खाते बहुत मीठा लगता है, इसमें पता नहीं चलता कितना खा गया। वो सब खा पी करके उसको बजाता है, उसमें चने की आवाज आती है, फिर वो हाथ देता है, पहले सुनता है फिर यूं हाथ देता है, यूं पतला सा खा पतला सा मुट्ठी भर ली, मुट्ठी भर के अब वो उसमें निकाल, अब ये निकलता नहीं, मुंह तो है छोटा और मुट्ठी, अब यदि यूं कर ले तो निकल जाए, उसको लालच है यदि यूं कर दो छूट जाएगा ही, वो यूं जोर लगाता रहता है, इतने में पीछे से आके लोग पकड़ लेते हैं। तो बंदियों की मरकट की नाई, ऐसे ही जीव बड़ा समर्थ है संसार के भोगों से ये उपराम रह सके, ऐसा इसमें सामर्थ्य है, परंतु यद्यपि मिर्सा छूटत कठिन नहीं, ये संसार का बंधन है तो झूठा, लेकिन झूठा होते ही क्या करे, वो अंदर से सच्चा मानता है ना, उसकी मान्यता काम आएगी। जो फंसे हुए हम लोग हैं, हम लोग इसको सच्चा मानते हैं, अब बताओ कौन इसको झूठा करेगा, ऐसा ही है इसका यहां पर फंसावट का काम हो गया। वेदों ने बहुत समझाया, शास्त्रों ने समझाया, संतों ने समझाया, छूटने के बहुत उपाय किए, पर छूटन अधिक अधिक अरुझाई, छूटे तो नहीं उल्टा और उसमें उलझ गया। क्यों उलझ गया, अज्ञान के कारण। जी हृदय तम मोह विशेषी, इसमें बहुत अहंग अंधकार, अज्ञान का अंधकार आ गया। अब अंधकार आ गया तो अंधकार को तो किसी प्रकाश से ही मिटाना पड़ता है, तो अब प्रकाश के लिए क्या करोगे, दीपक लाओ। अब दीपक लाएंगे तो उसमें घी चाहिएगा, उसमें बाती चाहिएगी, फिर उसमें प्रकाश करना होगा, फिर अपनी आंखें भी कुछ काम करेंगी, तब जाकर के दीपक जो है वो प्रकाश करेगा। अब दीपक लावे तो पहले पहले घी कहां से लावे, तो साथ घी आता है गाय का, तो गाय तो पहले घर में गाय बांधो, फिर उस गाय को चारा चराओ, फिर इसको बछड़ा कोई देओ, फिर एक नेतना लाओ दूध दूने के लिए, फिर दूने वाला चाहिए, और फिर उस दूध को ओटाना चाहिए, और फिर जो है उसको ठंडा करना चाहिए, ठंडा करने के बाद उसमें जावन देना चाहिए, जावन देने के बाद में फिर उसका मंथन करना चाहिए, बिलोना करना चाहिए, बिलोना के लिए चाडा चाहिए, और उसके साथ में एक कड़ी और होती है वहाँ खंबे आदि से बांधने, उसके लिए डोरी चाहिए, एक वो मथानी होती है उसके लिए डोरी चाहिए, फिर उसके बाद बिलोना किया जाए तब उसमें से मक्खन निकले, उस मक्खन को लेकर के अग्नि में तपाओ, तपाने के बाद उसमें जो छाछ अंश है वो तो जल जाए और प्योर घी रहे, शुद्ध घी रहे, वो घी लेकर के और किसी दिया में रखो, तब जाकर के वो प्रकाश होवे, तब जाकर के अंधकार मिटे। तो कहते हैं ये अंधकार तो मिटना फिर भी सुगम है, गाय भी रख ले और भी कर ले, पर ये अज्ञान रूप जो अंधकार है इसके लिए क्या करें। तो कहा सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, अपने अंदर जो पवित्र श्रद्धा भाव है वो तो है गाय, वो गाय बांधो, अर्थात भगवान में श्रद्धा करो, महापुरुषों के वचनों में श्रद्धा करो, वेद पुराण आदि शास्त्रों में श्रद्धा करो। फिर चारा कहां से लाऊं, कि जप तप व्रत दम नियम अपारा, जे सुति कह शुभ धर्म यचारा, तै तिन हरित चरे जब गाई। ये जप है कि तप है कि ये गृहस्थोचित कर्म है, ये क्या है, उस श्रद्धा रूपी गाय का चारा है। फिर बछड़ा क्या से लाए, कि हमारे अंदर जो भाव होता है भाव बच्च, ये भाव रूपी बछड़ा है वो श्रद्धा श्रद्धा रूपी गाय का भाव रूपी बछड़ा है, और वो जब तप आदि चारे से है, गाय जब पुष्ट होती है हरा चारा खाने से, फिर वो इस बछड़े को देख करके पावस जाती है, और संसार से जो निवृत्ति है वो नेत्रणा है, जिससे बांधते गाय के पैर बांध देते हैं, फिर गाय दूते हैं। फिर पात्र के अलावा है कि हमारा जो विश्वास है, पात्र क्या, विश्वास ये पात्र है, इसके अंदर ये जो है दूध दूना है, तो दूध क्या चीज है जी, ये परम धर्ममय दूध पय दूध भाई, ये धार्मिक धार्मिक व्यवहार धार्मिक आचरण, अपने अंदर धर्म वृत्ति, भाई किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के साथ में अन्याय नहीं करना, धोखा नहीं करना, इत्यादि इत्यादि जो धर्म है ये दूध है, दूध। और इसको कौन सी अग्नि में ओटावे, कि अकाम बनाई, निष्काम अग्नि के अंदर इस दूध को खूब ओटाओ, जरा सी भी कामना न रहे। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, और फिर उसको ठंडा करना है तो क्या है, संतोष रूपी वायु हो और क्षमा रूपी पात्र में रख करके उसको ठंडा करें। ठंडा हो गया साहब, अब इसको जमाना है तो इसके अंदर थोड़ा जावन दे, तो धृति सम जावन दे जमावे, धैर्य रूपी जावन दो, धैर्य रखना चाहिए आदमी। देखो परमात्मा की प्राप्ति में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, इसको धारणा शक्ति बोलते हैं। धैर्य क्या, हम थोड़ा भी हमारा मन बड़ा चंचल है जी, कौन करे प्रार्थना, ऐसा नहीं है, इसमें चलते रहना चाहिए। ये साहब क्या करें, हमारा हमारी वृत्तियां तो संसार में यूं ही खींचती चली जाती है, नहीं फिर भी चलो, अपने ऊपर तत्काल प्रभाव न देख करके आदमी इस साधन से इस मार्ग से हताश हो जाता है। ये तत्काल वाला मार्ग नहीं, जैसे पानी में हाथ दिया और पानी हाथ गीला हो गया, आग में हाथ दिया और आग जल गया, ऐसी सोचते हम भगवान का ध्यान कर तो भगवान मिल जाए, ऐसे नहीं होता है। ये ऐसे होने वाली चीज नहीं, इसमें धैर्य रखना होता है। जैसे वृक्ष है, हरा भरा वृक्ष, इसको इसकी टहनी काट दी, काटती जमीन पर गई, अब वृक्ष से संबंध नहीं पड़ी। ये तो वृक्ष तो हरा भरा था, ये तो अभी भी हरी भरी है, कट गई तो भी हरी भरी है। अरे कट गई, अब ये सूखने में समय लगेगा। इतने वर्षों तक ये तना यहाँ रहा है, तना इतने वर्षों तक, एक दिन में कैसे सूख जाएगा? ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से हमारी मन की वृत्तियां संसार में दौड़ती रही दौड़ती रही, वो एकदम कैसे रुक जाएगी? वो जाएंगी, फिर आप भी अध्ययन करोगे कि ओहो संसार में मन गया, अच्छा नहीं है, फिर अब फिर जाएगा, फिर रोकोगे। ऐसे करते करते वो धैर्य शक्ति काम आएगी, धैर्य शक्ति से सब काम बन जाएगा, अंत में आपका संसार से वैराग्य हो जाएगा। तो धृति सम जावन दे जमावे, और फिर बार बार जो आप विचार करोगे, वो मंथन है, ये मथानी मथानी है, लकड़ी की बड़ी बड़ी बात, और ये डोरी का ही है कि दम आधार रजु सत्य सुवानी, मीठी वाणी बोलना और प्रिय वाणी बोलना, ये डोरी है डोरी। और योग रूपी अग्नि के अंदर उस मक्खन को फिर जो है रखा गर्म किया, तो कर्म सुभा सब जाए, खटाई उटाई सब उसमें जल गई, छाछ वगैरह सब खत्म हो गया, और वो ज्ञान रूपी घृत पैदा हुआ, ज्ञान रूपी घृत, और ममता रूपी जो मल था वो समाप्त हो गया। अब वो ज्ञान रूपी घृत है, वो बुद्धि के अंदर रहा, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, समता दियटी बना, और बाती काय की बनाओ कि तीन ही अवस्था तीन गुण, ये है कपास, इस कपास में से तूल तुरीय सवारी पुनी, तुरीय अवस्था होती है, अर्थात तीनों से अतीत जो अवस्था होती है वो उसकी बनाओ बाती, और बाती बना करके और दीपक जमगाओ। ऐसा जब दीपक होगा, फिर इस दीपक की अखंड लो होगी, अखंड लो क्या, सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, हमारे वो ही परमात्मा मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, मेरा और परमात्मा का एक रूप है, ऐसी वृत्ति हरदम बनी रहे। देखो दीपक का प्रकाश कब काम आता है, जब दीपक की लो यूं सीधी रहती है, थोड़ी यूं हिलती रहती है तो चीज दिखती नहीं है वहां, और कोई थोड़ा दीपक यहाँ है, यूं हवा किया, हवा जगह यूं हिल जाएगी, हिल जाने से वो चीज दिखेगी नहीं। सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। तब सारे संसार का जो हमारे अंदर जमावट थी ना, जमावट संसार की जमावट, वो सब समाप्त हो जाता है, अविद्या का परिवार दूर हो जाता है। और सौरति ग्रंथि पाव जो होई, इसमें अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, ये ज्ञान रूपी दीपक बनाते हैं, इसमें अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, कितना तो कठिन काम है और कितना ये कष्टदायक, कष्टदायक के साथ साथ में कितना नाजुक काम है, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, ये अनेक इंद्रियों के दरवाजे हैं, सब इंद्रियां ना ये खुली है, नेत्र है ये खुला है, ये कान है ये खुला है, नाक है ये खुला है, जीव भी है, ये त्वचा भी खुली है, सब इंद्रियां खुली है। ये खुली क्यों है नी? ये झरोखा है, शरीर के झरोखे, इन झरोखों के अंदर देवता लोग बैठे रहते हैं, आंख के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, कान के अंदर दिशाएं बैठी हुई है, और जीव के अंदर अग्नि बैठी हुई है, सब अपने इसमें वरुण देवता भी बैठा हुआ है, हाथ में इंद्र बैठा हुआ है, सब इंद्रियों में देवता होते हैं। तब देवता क्या करते हैं कि भाई इन देवताओं को ये ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। इंद्रिन सुरनन ज्ञान सुहाई, इंद्रियों को ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, देवताओं को ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, विषय भोग पर प्रीति सदाई, इन्होंने तो सदा विषयों के भोगों में ही प्रेम किया है, तो बार बार उधर ही उधर दौड़ती है। उससे क्या होता है कि उससे वायु चलती है तो उससे ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। जब विषयों का सामने हम दर्शन करते हैं अथवा विषय अपने मन में उठते हैं तो ये ज्ञान की हवा यूं कर बुझ जाती है, तब ही दीप विज्ञान बुझाई उसे कि तब फिर जीव विविध विधि संस्कृति पावई क्लेश, बहुत क्लेश पाता, इतने परिश्रम से ज्ञान प्राप्त किया और अंत में जाकर के जरा सी असावधानी से वो हवा के अंदर वो दीपक समाप्त तो हो गया। कहत कठिन साधत कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, पर होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक। कहने में बड़ी कठिनता है ज्ञान की, समझने में कठिनता है और उसकी साधना भी बड़ी कठिन है, परंतु यदि किसी प्रकार गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय क्या है, दीपक है वो, दीमक है वो लकड़ी में लगे और वो लकड़ी में चलते चलते राम लिख दे, रा और मैं, ये राम लिख दिया साहब, दीमक ने राम लिख दिया। अब दीमक को रे और मैं का पता थोड़ा ही है, वो दीपक ही दीमक में, वो दीमक ने ही चाल कर ली, राम ही आगे आगे। ये गुणाक्षर न्याय है, गुण है, गुण गुणों ने अक्षर बना दिया तो गुणाक्षर हो गया। पुनि प्रत्यूह अनेक, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का मार्ग है ना ये कृपाण की धारा है, कृपाण माने तलवार, तलवार की धार पर चलना है। परत खगेश हो ही नहीं बारा, देखो गरुड़ जी महाराज इसमें गिरने में कोई टाइम नहीं लगता है, इसलिए मनुष्य को ज्ञान की साधना में बहुत सावधान रहना चाहिए। पर राम भजत सोई मुगति गोसाई, अनई छत आवई बरी आई, भगवान के भजन के अंदर लग जाता है तो बहुत आसानी से सब काम हो जाते हैं, न तो उसको कोई किसी को वश में करना है और न कोई उसको कोई घी लाना है, क्योंकि भगवान की भक्ति क्या है, ये भक्ति एक मणि है, मणि भक्ति मणि है, मणि मणि को बताओ, अब मणि यहाँ पड़ी है तो कितनी हवा चले मणि का प्रकाश रुकता नहीं, मणि का प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है और मणि के अंदर बड़े लाभ होते हैं। तो जिस प्रकार से भोजन करते हैं तो भोजन तो करते हैं भूख निवृत्ति, भूख लगे ही भोजन करें, लेकिन भोजन करने के बाद आपको तृप्ति कैसे होती है, अनायास ही होती है। तृप्ति के लिए क्या करते हो, भोजन के लिए, भूख मिटाने के लिए तो भोजन करते हो, पर तृप्ति के लिए कि नहीं करते, शरीर में बल के लिए कि कुछ नहीं करते। अच्छा बताओ जी, भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद भोजन को पचाने के लिए आप क्या खाते हो, कुछ नहीं खाते, केवल भोजन करना है, उसके बाद सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक होता है, उसका पचना भी, उसका रस भी बनना, उसमें से सार भाग शरीर में बनना, निस्सार का बाहर निकलना और सब काम होता है। ऐसे ही एक भगवान के साथ जुड़ जाए, भक्ति कर ले, भगवान से संबंध कर ले, ये ज्ञान वैराग्य दूसरी सब बातें अपने आप ही आ जाएंगी। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कौ करे उपाय। जैसे जड़ है वो थल के बिना नहीं रह सकता, जड़ के टिकने के लिए नीचे जगह चाहिए, थल चाहिए। अब जगह बादलों से जो पानी बरसता है वो बीच में टिकता क्यों नहीं, कि वहां कोई जगह नहीं मिली और फिर ये जगह धरती मिलती है, यहाँ के पानी टिकता है। ऐसे ही मोक्ष का जो आनंद है वो बिना भगवान की भक्ति के ठहरता नहीं है। तुमको जो ज्ञान मिलेगा ना गरुड़ जी, उस ज्ञान का जो आनंद मिलेगा वो बिना हृदय में भक्ति हुए बिना ठहर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ऐसे भगवान कितने विलक्षण भगवान है, जो चेतन कई जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, जो जड़ को चेतन चेतन को जड़ बना देते हैं, उस परमात्मा का भजन करो वे जीव बड़े धन्य होते हैं। अब मैं आपको देखो ज्ञान का सिद्धांत तो सुना दिया, अब मैं भक्ति का विवेचन विस्तार से आप लोगों को सुनाऊंगा। अब गरुड़ जी महाराज को काकभूषण जी भक्ति की विशेष महिमा आगे बताते हैं। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय 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 सीताराम 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 जय
सीतावर राम चंद्र की
जय
वंशी वाले
की जय
उमापति महादेव की
जय
पवन सुत हनुमान की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं
की जय
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
आनंद कंद भगवान
की जय
भक्तवत्सल भगवान की
जय।